ऋग्वेद प्रथम मंडल 23वां सूक्त और 18वां मंत्र। अपो देवी रूपहवये यत्र गावः पिबन्तिनः सिन्धुभ्यः कर्त्वं हवि। पदार्थ, यत्र जिस व्यवहार में गावः सूर्य की किरणें सिन्धुभ्यः समुद्र और नदियों से, देवी दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले, अपः जलों को पिबन्ति पीती हैं, उन जलों को नः हम लोगों के, हवि हवन करने योग्य पदार्थों के, कर्तवम उत्पन्न करने के लिए मैं उपहवये अच्छे प्रकार स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, सूर्य की किरणें जितना जल छिन्न भिन्न अर्थात कण कण कर वायु के संयोग से खींचती हैं, उतना ही वहाँ से निवृत्त होकर भूमि और औषधियों को प्राप्त होता है। विद्वान लोगों को वह जल पान स्नान और शिल्प कार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के शुभ संपादन करने चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि का सिस्टम, या कहें कि पृथ्वी का सिस्टम, एक ना रिसाइकलेबल मॉडल पर रखा है। भगवान ने जितनी भी चीज़ें मनुष्य को उपयोग करने के लिए दी हैं, वे जो हैं रिसाइकलिंग नेचर की होती हैं 100%। आप कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल भी तो प्राकृतिक व्यवस्था के रूप से ही हमें प्राप्त हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी परमेश्वर ने ही हमें दिया है। परंतु परमेश्वर ने निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल हमारे उपयोग के लिए नहीं किया, उसका उपयोग कुछ और होगा। हो सकता है वो जो तेल है, भूमिगत तेल है, वह पृथ्वी को संरक्षित करता होगा, हो सकता है कि वह भूकंप आदि को रोकने में सहायता करता होगा, परंतु मनुष्य ने अपनी अल्पबुद्धि से उसका प्रयोग किसी और काम के लिए कर लिया। नैसर्गिक रूप से अगर हम वेद की बात करें, तो वेद में जिन जिन पदार्थों का उपयोग करने का आदेश है, निर्देश है, वे सभी पदार्थ जो हैं वे रिसाइकलिंग नेचर के हैं, कि मतलब आप उसको आज उपयोग कर लेते हैं तो पुनः उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनकी कमी नहीं होगी। जैसे वायु है, जल है, आप लकड़ी को भी इसमें गिन सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लकड़ी पेड़ों से प्राप्त करते हैं, और यदि आप हवन आदि नित्य रूप से यदि सभी मनुष्य करें और वर्षा ऋतु सही समय पर सही तरीके से होती रही, तो जंगल के जंगल खड़े हो सकते हैं दोबारा, और पहले होते भी थे। अब जो है उन चीज़ों की में असंतुलन आ गया, तो इसलिए अब वो सोचना मुश्किल है, और वो भी उसके लिए भी मनुष्य ही उत्तरदायी है, ईश्वर नहीं है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हवन आदि जो उत्तम औषधियाँ जिन हवन आदि कार्यों में हम उपयोग करते हैं, जिन शिल्प कार्यों में हम उपयोग करते हैं, उसके लिए भी हमें जल की आवश्यकता है। हवन का ही उपयोग यहाँ पर क्यों कहा गया, ये क्यों नहीं कहा गया कि भोजन पकाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता है? उसका कारण ये है कि हवन एक ऐसा कार्य होता है जिससे कम समय में, कम संसाधन में सबसे ज़्यादा उपकार होता है। आप जब भोजन करेंगे, पकाएंगे, अपने लिए खाएंगे, 2, 4, 15, 20 लोगों को खिला देंगे, परंतु जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे मनुष्यों के साथ साथ उस हवन के धुएं में जितने भी जीव जंतु प्राणी आते हैं, उन सभी का उपकार हो जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है, हवन यज्ञ आदि, और उसको करने के लिए हवा में तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको घी भी लगेगा, औषधियाँ लगेंगी, मिष्ठान्न लगेंगे, सुगंधित द्रव्य लगेंगे। इन सब की प्राप्ति का जो मूल है वह है जल। यदि जल अपने समय पर होगा, तो समय से और निश्चित मात्रा में होगा, ना अधिक ना कम, तो उतना ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, उतना ही अच्छी औषधि समूह अन्न आदि की उत्पत्ति हो सकती है, जिससे हमारा पेट भी भरेगा और जिससे हम हवन होम करके अन्य प्राणियों का उपकार भी कर पाएंगे। यही इस मंत्र का मुख्य अर्थ है। ओ